أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات پر دے ملک محمد برادران عزیز، یہ یوم ولادت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی تبریک و تہنیت اپنی جانب سے، آپ تمام اہل ایمان کی جانب سے، علماء اعلام مراجع اعظم بالاخص مقام معظم رہبری کی جانب سے، بارگاہ حضرت بقیت اللہ، حضرت صاحب عصر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں پیش کرتے ہیں۔ اس تبریک کو پیش کرتے ہوئے ایک با آواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عام تمام احباب کی خدمت میں 47ویں یوم تاسیس کے عنوان سے بھی تبریک پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ان 47 سالوں میں آپ احباب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس خط سے مربوط رکھا اور اس خط پر گامزن رکھا کہ جس کے ہم مکلف بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں، کہ جس خط پر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے مقدر میں آئے گی۔ لہذا آج کا دن کیونکہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے، تو ضروری سمجھا اس عنوان کو کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام میں مظلوم ترین شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضرت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدامات، ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تمام ائمہ کی طرح مشعل راہ ہیں کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے خانوادے کے وہ پہلے فرد کہ جن کی ولادت کا اہتمام کچھ اس انداز سے ہوا کہ جب امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ امام حسن مشتبہ کا نام رکھیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے موجودگی میں میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنے فرزند کا نام خود رکھوں؟ تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کے ہوتے ہوئے میں بھی اس مولود کا نام نہیں رکھوں گا۔ لہذا جبرائیل آئے اور حضرت ہارون کے فرزند شبر کے انعام سے عربی ترجمے کے اعتبار سے حسن نام رکھا گیا۔ اس نام کا حسن بتا رہا ہے کہ یہ نام کس نے منتخب کیا ہے۔ لہذا آج اسی امام کی ولادت کا روز ہے کہ جس امام کی سل کو سب پہچانتے ہیں، سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور بعض افراد اپنے اپنے عنوان سے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کی توجیہات پیش کرتے ہیں، مگر میرا اور آپ کا عقیدہ یہ مسلم ہے کلہم نور واحد، کہ اگر اس مقام پہ کہ جس مقام پر امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کا اقدام کیا، اگر اس مقام پر امیر المومنین ہوتے تو وہ بھی وہی کام کرتے جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا تھا۔ لہذا امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پر صلح کو انجام دیا ہے، اسلام کے نفع کے لیے، اسلام کی بہبود کے لیے، اسلام کی حفظان کے لیے، یہ کام ضروری تھا کہ جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ لہذا کچھ نکات کی طرف میں اور آپ توجہ کرتے ہیں اور اپنے لیے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں متاسفانہ کچھ لوگ جب قیام نہیں کرنا چاہتے تو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لیتے ہیں، کچھ لوگ جب قیام کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لیتے ہیں۔ لہذا امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدامات کو اپنے لیے اس انداز سے توجیہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک حجت مل جائے اور وہ اپنے اقدام کو ان سے منسوب کر کے کوئی مجوز تیار کر لیں. آج ہمارے لیے امام حسن بھی حجت ہیں، آج ہمارے لیے امام حسین بھی حجت ہیں. اگر آپ توجہ کریں صلح امام حسن، تو صلح امام حسن سکوت امام حسن نہیں ہے. اگر آپ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کریں، تو خود اس صلح کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قیام کا موقع میسر آ رہا ہے. اگر یہ صلح امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتی، اور ابتدان کیا امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا تھا کہ صلح ہو؟ امام تو قیام کے لیے نکلے تھے، امام لشکر لے کر نکلے تھے. عبیداللہ ابن عباس 30,000 کے لشکر کے ساتھ چند سکوں کی جھنکار کی وجہ سے لشکر حق کو چھوڑ کر لشکر باطل سے جا ملے، اور اس کے بعد وہ قلیل تعداد کہ جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں تھی، اگر امام جنگ کرتے تو اس جنگ کے اثرات وہ نہ رونما ہوتے جو ہونے چاہیے تھے، جو جس کی امام تمنا کر رہے تھے. لہذا امام نکلے جنگ کرنے ہی تھے، لیکن چونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لوگ امام کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، لوگوں نے سازشوں پر افواہوں پر کان دھرنا شروع کر دیا. امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنگ کہ جس کو تلوار سے کرنے نکلے تھے، اس جنگ کے رخ کو قلم کی دھار کی طرف پلٹا دیا. اور اس انداز سے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی کہ واقعاً آج دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلم کے زور پر باطل کے چہرے سے ایسے ہی نقاب کھینچی ہے جیسے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دے کر باطل کے چہرے سے نقاب کھینچی تھی. اب ذرا سی توجہ کیجئے، خصوصاً وہ برادران جو پیچھے تشریف فرما ہے، ان سے خواہش کروں گا کہ چند جملات پر توجہ کیجئے کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صلح کے مقاصد اور وجوہات کیا تھی. امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے؟ تاریخ نے بیان کیا 5 قسم کے افراد 4 قسم کے افراد امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. کچھ وہ لوگ تھے جو اس عصبیت میں آئے تھے کہ دار الخلافہ کوفہ سے شام دمشق کیوں منتقل ہو گیا. کچھ وہ لوگ تھے جو مال غنیمت کی لالچ میں آئے تھے. کچھ وہ لوگ تھے جو امام حسن کی محبت میں نہیں آئے تھے، بلکہ امیر شام سے جنگ کرنے آئے تھے. یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں ان کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، اسلام کو بہبود ملے، فلاح ملے یا نقصان پہنچے، وہ اس غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف امیر شام سے جنگ کریں، جن کو ابتدا میں ہی امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ بغیر کسی شرط کے اگر تمہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تو بیعت کرو، جس سے میں صلح کروں گا اس سے تم صلح کرو گے، جس سے میں جنگ کروں گا اس سے تم جنگ کرو گے. مگر خوارج نے اس موقع پر بھی اختلاف کیا، اور اس موقع پر بھی انہوں نے فتنہ ایجاد کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. لہذا امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تین گروہ کہ کوئی دارالخلافہ کے منتقل ہونے کی وجہ سے ساتھ ہے، کوئی مال غنیمت کی لالچ میں ساتھ ہے، کوئی فقط امیر شام سے جنگ کرنے کے لیے ساتھ ہے، نہ یہ کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام برحق سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دے. اب رہی تعداد وہ مختصر سے شیعہ افراد کی کہ جو خالصتاً امام کے امر کی پابندی کرتے ہوئے، امام کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے. وہ چند افراد، وہ قلیل افراد، اگر امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرتے تو یہ چند افراد بھی اس جنگ میں مارے جاتے. آمدن لفظ استعمال کر رہا ہوں، امام اگر دیکھتے کہ ان کا قتل ہو جانا شہادت کے درجے پر پہنچتا تو حتمن امام پر جنگ کرتے، لیکن اس موقع پر امام کا جنگ نہ کرنا بتا رہا ہے کہ ان کا قتل ہونا وہ خون وہ رنگ نہیں لائے گا کہ جس کا اسلام تقاضا کر رہا ہے. لہذا امام نے اپنے ان چند شیعوں کو بچایا، اس دین کو بچایا، اور اس کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم اٹھا کر صلح کی شرائط لکھی. اور اتنا سخت دور امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ دشمن دشمنی پر اترا ہوا ہے اور دشمنی کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض نام نہاد وہ لوگ کہ جو امام کے ساتھی شمار ہوتے تھے، इमाम को भी अजब अंदाज से सलाम कर रहे हैं। और जब इमाम अलैहिस्सलाम ने ये हालात देखे तो इमाम ने इस बात को गवारा किया कि चाहे कोई नाराहत हो या कोई राजी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं वो काम करूंगा जो दीन हक के लिए फायदेमंद होगा। लिहाजा आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम की रविश रही है। आज हम अपनी जिंदगी में इस हवाले से तवज्जो करें कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत भी सामने रहे, सैयदुल शहदा की सीरत भी सामने रहे, दीगर मासूमीन की सीरत भी सामने रहे। ये सब उस वक्त जब मेरे और आपके सामने आएंगे तो मुझे और आपको एहसास होगा कि वाकई इनकी सीरत में, इनके किरदार में, इनके गुफ्तार में, इनकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं है। कुल्लुहुम नूरुन वाहिद। मकाम मुअज्जम रहबरी को यह बयान करते हैं कि एक इंसान की जिंदगी है जो 250 साल पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ हालात सामने आते रहे, इनके दिफा का अंदाज बदलता रहा। दुश्मन इस्लाम पर हमले करने के लिए अपने हथियार बदल रहा था, ये दिफा के अंदाज उसी हथियार के मुकाबले पर उसी अंदाज से लेकर आ रहे थे और हर तरीके से इस्लाम को बचाकर आज इस्लाम सही और सालिम सूरत में हम तक पहुंचा दिया। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए सैयद और सरदार आका और मौला इमाम ज़मान अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए खुद को आमादा करें। एक सलावत पढ़ दें मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम कभी भी दुश्मन के सजाए हुए मैदान में हाजिर नहीं हुए। तवज्जो रखिएगा, इमाम कभी भी दुश्मन के सजाए हुए मैदान में हाजिर नहीं हुए। दुश्मन भी मैदान सजाता है, दुश्मन भी चाहता है कि मैदान में बुलाया जाए, लेकिन आइम्मा की रविश यह रही कि दुश्मन ने जो मंसूबा बनाया उस मंसूबे में दुश्मन को कामयाब नहीं होने दिया। इमाम हज़रत मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लिए उम्र आस के कहने पर यह मंसूबा बनाया गया था कि इस लश्कर को खरीद लिया जाए, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को खरीद लिया जाए, 30,000 का लश्कर इस तरफ आ जाए, जंग हो, इसी लश्कर में से कोई इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दे, बाद में अमीर शाम को यह बहाना मिल जाए कि मैंने कत्ल नहीं किया, उन्हीं के लश्कर वालों ने उनको कत्ल किया। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? दुश्मन चाह रहा था कि जंग हो, इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की। सैयद शहदा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? दुश्मन चाह रहा था कि जंग ना हो, बैत करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत का इनकार कर दिया और जंग के लिए कयाम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला तक पहुंच गए। कयाम किया इमाम ने, जंग के लिए किया या इस कयाम की वजह से जंग हुई? लेकिन दुश्मन के सजाए हुए मैदान में इमाम हाजिर नहीं हुए। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने मैदान में दुश्मन को बुलाकर इस्लाम को बचाया है। सैयदुल शहदा चाहते तो करबला, सैयदुल शहदा चाहते तो मदीना में ही रहते और मदीना में भी शहीद कर दिए जाते। यही तो हुक्म दिया था कि अगर बैत का इनकार करें तो सर तन से जुदा कर दो। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना मक्तल खुद मुंतखब किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना में कत्ल होना गवारा नहीं किया। मक्का में आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हरम में रहें। इमाम ने कहा मैं मक्का से एक बालिश के फासले पर कत्ल होना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मक्का में कत्ल कर दिया जाऊं। कत्ल मदीना में भी होते, कत्ल मक्का में भी होते, कत्ल करबला में भी कर दिए गए। फर्क क्या था? फर्क यह था कि इमाम ने करबला में दुश्मन को बुलाया और अपने सजाए हुए मैदान में दुश्मन को बुलाकर उसको शिकस्त दी। जहां जाहिरन सर तो कटे, सर नेजों पर बुलंद हुए, लेकिन बुलंद होकर इतने बुलंद हुए कि आज भी जब इन ज़बाते मुकद्दसा का नाम लिया जाता है तो एहतराम में लोगों के सर झुक जाते हैं इनकी ताजीम के लिए। लिहाजा आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम के इकदाम, एक सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइम्मा के इकदाम हमारे लिए उस्वा हैं। कुल्लुहुम नूरुन वाहिद, ये सब के सब इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम की फलाह के लिए, इस्लाम के बहबूद के लिए, इस्लाम के हिफ्ज के लिए वो इकदाम करते हैं। इसीलिए हमारे वहां मशहूर मारूफ जुमला अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद कि ये सब के सब मोहम्मदी मिजाज रखते हैं, ये सब के सब मोहम्मदी अफकार रखते हैं, ये सब इस्लाम का दिफा करने वाले हैं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने भी वही काम किया कि जो इस्लाम के दिफा के लिए बेहतरीन हिकमत थी, लिहाजा इमाम ने दुश्मन के मंसूबों को मलियामेट कर दिया और अपनी शरायत को कागज पर तहरीर किया। सवाल यह उठता है क्या उनमें से एक शर्त भी दुश्मन ने मानी, एक का भी पास रखा, एक का भी लिहाज किया? तो जवाब नफी में है, एक शर्त का भी लिहाज नहीं किया। मगर तारीख में तो सब हो गया कि हज़रत मुश्तबा ने ये शर्त रखवाई थी, आज के बाद से तुम कुरान और सुन्नत पर अमल करोगे और तुम इस पर राजी हुए थे कि हाँ मैं कुरान और सुन्नत पर अमल करूंगा। तारीख में तो सब हुआ, दुनिया ने तो देखा कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने शर्त रखवाई थी कि तुम अपने बाद किसी को अपनी जगह नामजद करके नहीं जाओगे। दुनिया ने देखा कि उसने अपनी जगह यजीद को बिठाला। आज जो लोग चाहते भी हैं वो यजीद का दिफा नहीं कर पाते, इसलिए कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे से नकाब को उतार दिया है। और इस इकदाम से इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया है। रसूल से एक रिवायत मंसूब है जिसमें इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की तौसीफ इस अंदाज से की गई है, लौकान अल अक्ल रजुलन, या बाज जगह शख्सन, अगर अक्ल किसी मर्द की सूरत में मुजस्सम होकर आती, लकान अल हसन, तो वह हसन इब्ने अली की सूरत में होती। अगर अक्ल किसी शक्ल सूरत में किसी मर्द की सूरत में मुजस्सम होकर आती तो वो हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत में मुजस्सम होकर आती। लिहाजा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि जैसे भी हालात हो, चाहे उन हालात में तुम्हें इस्लाम का दिफा करने की सजा दी जाए, तुम्हें ताने दिए जाएं, तुम्हें तशने दिए जाएं, तुम्हें परेशान किया जाए, हत्ता तुम्हारे कदमों के नीचे से मुसल्ले को खींच लिया जाए, तुम्हारे खेमे को तुम्हारे घर को ताराज कर दिया जाए, मगर अगर इस्लाम पर वक्त आए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी इज्जत को बालाए ताक रखकर, अपनी आबरू को बालाए ताक रखकर, अपने मकाम मनसब को बालाए ताक रखकर इस्लाम के दिफा के लिए बेहतरीन हिकमत अमली को इंतखाब करो, चाहे इसके बाद लोगों की नजर में तुम्हारी हैसियत कम हो जाए, मगर तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी, तुम्हें दीन की परवाह करनी है और खुदावंद मुताल की निगाहों में अपने आप को अजीज करना है। यही इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने किया। आसान मरहला नहीं था। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम उस मुसीबत से दो चार हुए कि लोग सलाम कर रहे हैं, सलाम अलैका यबना रसूलल्लाह, और कहीं लोग सलाम कर रहे हैं, सलाम अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन। आसान मरहला नहीं था अजीजा ने मोहतरम। आज हमारे पास थोड़ा सा मकाम है, थोड़ा सा मकाम मिल जाने के बाद अगर कोई थोड़ी सी बेहतरामी कर दे, हमारी पेशानी पर बल आ जाता है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को मुज़िल्लल मोमिनीन कहकर खिताब कर रहे हैं, वाकई सख्त है, इसका तर्जुमा करना सख्त है। ये मुसीबत है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की मसाइब में से एक मुसीबत है कि जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने सख्ती को बर्दाश्त किया है। कौन हसन? वो हसन कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर एक दोष पर इमाम हुसैन सवार है तो दूसरे दोष पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अगर एक तरफ से गेसू हुसैन ने थामे हुए तो दूसरी तरफ से इमाम हसन ने थामे हुए, अगर इमाम हुसैन को इमाम कह रहे हैं तो इमाम हसन को भी इमाम कह रहे हैं, अगर इमाम हुसैन मिन्नियत की मंजिल पर है तो इमाम हसन भी मिन्नियत की मंजिल पर है। अज़ीज़ाने मोहतरम, खत्म किया अपने अराइज़ को, बस इस पर तवज्जो कर लें कि तारीख ने जो खयानत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के इनवान से की वो ये खयानत थी कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को सुल्ह पसंद दिखाया कुल नाइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से, कुल मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जंग पसंद दिखाया। कई मरतबा मजालिस में महाफिल में इस बात को बयान कर चुका हूं, तबरुकन व तयमुनन एक और मरतबा बयान करूं,
इस तरीके की रिवायत बयान की गई कि हसन नाना की शबी है, हुसैन बाबा की शबी है, यानी अली जंग पसंद है, रसूल सुलह पसंद है। हसन सुलह पसंद है, हुसैन जंग पसंद है। जबकि अगर देखा जाए आज जवानों की जिम्मेदारी है कि रहबर की उस किताब को जरूर आम मुताला करें जो रहबर के खुतबात हैं। 250 साल, 250 साल इंसान जरूर उस किताब का मुताला करें ताकि समझ में आए कि अहले बैत अथहार अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा, अहले बैत अथहार अलैहिस्सलाम की सीरत पाकीजा क्या है। उस सीरत को मैं और आप अगर मुताले के जरिए नहीं समझेंगे और दूसरों को नहीं समझाएंगे तो फिर कौन इसमें कदम आगे बढ़ाएगा। मिलके एक मरतबा फिर दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आल मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। बस आइए मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला किया जाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रसूल खुदा व इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत में कोई फर्क नहीं है। सबकी सीरत एक, सबका उसवा एक, सबकी हयात पाकीजा एक। वही सुल जिसको इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने जिस पर अपने दस्तखत किए थे उस इमजा के एहतराम में 10 साल तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कयाम नहीं कर रहे। उस दस्तखत के एहतराम में जो इमाम हसन के दस्तखत वहां से एक शब्द पर अमल नहीं हुआ। यहां ताबेदारी का आलम यह है कि क्योंकि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के दस्तखत मौजूद हैं, अब जब तक मद्दे मुकाबिल फरीक मौजूद रहेगा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम कयाम करते हुए नजर नहीं आ रहे। और इधर अमीर शाम गया, यजीद आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। साबित क्या हुआ? 10 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तलवार ना खींचना बता रहा है कि फर्क इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में नहीं है। फर्क अगर है तो दुश्मनाने दीन की जिंदगियों में, लिहाजा सामने से हमले बदलते रहेंगे। उन हमलों को मुझे और आपको भी बेहतरीन अंदाज से दिफा करना होगा, मुंसजिम होकर, मुत्तहिद होकर, मुआशरे को प्यार और मोहब्बत से अपनी जानिब बुलाना होगा। 47वां योम तासीस अल्हम्दुलिल्लाह हम मना रहे हैं, शहीद डॉक्टर की जो हयात मुबारक थी उसमें इतना जज्बा था, इतना जज्बा था कि अगर कोई मुखालिफ भी जब उनसे मुलाकात कर लेता था, गुफ्तगू कर लेता था और उसके दिल में रिज्स और मैल नहीं होता था तो वो फौरन मुनकलिब होकर हक के रास्ते पर आ जाता था। आज ये कहा जाता है कि जनाब कुछ जवान हैं जो हमसाया मुल्क का ज्यादा हिमायत करते बेनिस्बत जहां के वो मुकीम हैं। तो अजीजा ने मोहतरम 47 साल इस बात पे गवाह हैं, शाहिद हैं। ये 47वां योम तासीस इस बात की गवाही दे रहा है कि 7 साल पहले ये तंजीम कायम हो गई थी। उस वक्त तक उस जमीन की लिए कोई सबा बुलंद नहीं की थी, लेकिन जहां विलायत का निजाम कायम हुआ उस विलायत के एहतराम में उसका साथ देने का कहा गया। ये बता रहा है कि हम खुद हक शनास हैं, हक परस्त हैं, हक की राह पर चलने वाले हैं निजामे विलायत की वजह से, वरना यही ईरान शाह के दौर में भी ईरान था या उस सरजमीन का नाम कुछ और था, मामलात कुछ और थे। क्या मामला है? निजाम जब अहले बैत अथहार अलैहिस्सलाम का नाफिज हो गया तो अब उस निजाम के नाफिज होने की वजह से मैं और आप विलायत से मरबूत हैं और उस विलायत से मुझे और आपको मरबूत रहना चाहिए, क्योंकि हम माह रमजान में हर शब ये दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबू इलैका फी दौलतिन करीमा। ए अल्लाह, एक करीम हुकूमत की तेरी जानिब रगबत रखते हैं कि जिसके जरिए इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत मिले, जिसके जरिए निफाक और अहले निफाक को जलील किया जाए। परवरदिगार तेरी बारगाह में मुल्तजी है, दुआ करते हैं कि वक्त के इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आमान व अंसार में शामिल फरमा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता फरमा, मुआशरे के अंदर मोहब्बत को तकसीम करने की तौफीक इनायत फरमा, मोहब्बत के जरिए लोगों को राह रास्त पर लाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया मिल्लत तशय्यो को मुत्तहिद और मुंसजिम फरमा, गिरोहाने कुफ्र निफाक को मुंतशर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ बिजाहिन नबी अमीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। जवानों की हौसला अफजाई के लिए, उनकी तौफीकात में इजाफे के लिए, इस शजराए तैयबा के मजीद समरावर होने के लिए मिलकर ब आवाज़ बुलंद सलावात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।